नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने अंग श्यामलिम छटा मंदिर जगदूति संग विदत संग पट्टंबर श्रिया बृंदानंद निवासिनम हृदय सत्तामाभिरामोदर राधा स्कंद निवेशितोज्जल ध्यानेन्दाय चित्ताशतामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते च तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति ते ज्ञाय राधे तं धर्मा यत् किङ्करीषु भवता फलकानुवहनि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर परम सत्य राधा रमण के गोस्वामी श्री मधुसूदन गोस्वामी के वंशधर श्री श्रीमद पद्मनाभ गोस्वामी जी के द्वारा पूजित महाप्रभु जी के श्री मंदिर में हम लोग अपने कार्यक्रम में बहुत व्यस्त थे, तभी जिन्होंने ने हम लोगों को आह्वान किया, हम अपना सब काम अपना कार्यक्रम सब छोड़ करके क्यों आया। हम लोगों का यह संबंध एक दो वर्षों का नहीं, 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जिस समय महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर शिष्य मत गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यहाँ पर आए और गोमती शिला उनकी आराधना से संतुष्ट होकर राधा रमण के रूप में परिवर्तित हो गए। ऐसे भक्ति इरले बिरले बहुत अनरेयर हो गए, जिनके मनोभाव समझ कर इस रूप में राधा रमण के रूप में जिसमें राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन तीनों विराजमान है। यही नहीं, यहाँ के गोस्वामियों की ऐसी मान्यता है कि राधा रमण में वो महाप्रभु जी का राधा और कृष्ण मिलित भाव उसमें विराजित है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने बहुत प्रिय किसी ब्राह्मण जी को दीक्षा और शिक्षा देकर राधा रमण की सेवा में अपने पश्चात नियुक्त किया। उन्हीं के वंशधर राधा रमण के गोस्वामी 500 वर्षों से होते हुए चले आ रहे हैं। विशेष करके जिस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद निर्भीक होकर के असत संप्रदायों का खंडन करते हुए और निर्भीक भाव से महाप्रभु की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, उस समय उनको सहायता करने वाले बहुत कम लोग थे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर और इनके दो ही पुरुष पहले मधुसूदन सरस्वती जी मधुसूदन गोस्वामी बहुत ही विद्वान आदमी और हमारे संप्रदाय के विचारधारा में पूर्ण रूप से पारंगत, कहने में गृहस्थ किंतु गृहस्थ नहीं परमहंस महापुरुष थे। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को और श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने बड़ी सहायता की, विशेष करके श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के निवेदन किए जाने पर यही मुसुदन गोस्वामी जी प्रभुपाद जी के साथ में बेले खाई और कहां काम बेले खाई में ब्राह्मण और वैष्णव विचार में गए और वहां पर इन्होंने ऐसा भूमिका बांधी जो ब्राह्मणों का स्मार्ट ब्राह्मण का सपना चूरमार हो गया और इन लोगों की कृपा से श्री प्रभुपाद के कभी सिंह गर्जन से वहां पर ब्राह्मण किसको कहते हैं वैष्णव किसको कहते हैं और फिर इसका विचार देकर के वैष्णव धर्म की ध्वजा पताका विश्व भर में फहराए। उनके प्रधान सहायक हमारे मधुसूदन गोस्वामी थे, राधा रमण के गोस्वामी, उन्हीं के वंश में इनके पिताजी विशंभर गोस्वामी विशंभर गोस्वामी थे। वकालत करने पर वहां के लीडिंग एडवोकेट होने पर भी उसको छोड़ करके सांप्रदायिक धारा का प्रचार करने के लिए विदेशों में गए, यहाँ वहां गए और हम लोगों के साथ मेरे साथ में मैं चुप क्यों नहीं, मैं जानता हूँ जो मैं सब प्रकार से चुप हूँ, किंतु न जाने क्यों हमारे साथ में इतना बंधुत्व इनका था जो घर पर आने पर साथ ही साथ में सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ में घंटों बैठ करके बातचीत कर। उस समय ये लोग बच्चे थे, उस समय बहुत छोटे बच्चे थे। फिर उनके जाने के बाद में ये बहुत समाज सेवी वैष्णव धर्म के प्रचारक हमारे धर्म का संपूर्ण रूप से तत्व जानने वाले हमारे संप्रदाय के वर्तमान में ये गौरव हैं और हमारी सब प्रकार से हम लोगों की सहायता करते हैं। देश विदेश में भी ये हमारे महाप्रभु की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। इसी से प्रसन्न होकर के हमारे गौड़ीय समाज के लोगों ने ये सरगुज महाप्रभु सरगुज है तो महाप्रभु जी की काशी विग्रह स्थापित करके और इन लोगों के ऊपर में संपूर्ण रूप से इसका भार दे दिया और तब से इनकी सेवा पूजा ये लोग कर रहे हैं। उत्तर उत्तर इसकी आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थों का उद्धार विग्रहों का प्रकाश इत्यादि के लिए उनको भेजा। इसके बाद में उन्होंने रूप और सनातन को शक्ति का संचार करके यहाँ पर भेजा। उसके पहले स्वयं चैतन्य महाप्रभु अभी हमारे गोस्वामी जी ने बतलाया शास्त्रों में भी उल्लेख करते हैं चैतन्य भागवत और चैतन्य 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 महाप्रभु यहाँ पर पधारे थे। पहले वो आना चाहते थे किंतु उनके साथ में लाखों लोग आने लगे इसलिए वो कनाई की नाटशाला से रूप और सनातन को अपना संग दे करके और शक्ति संचार करके लौट गए और ठीक पीछे से वे झाड़ी कंस के पद से यहाँ पर आए और यहाँ कुछ दिनों तक रहे। कौन सा समय था इन्होंने बताया, इस समय से हम लोग अपनी दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत सेवा व्रत नियम सेवा आरंभ करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन में वो यहाँ पर पधारे कार्तिक महीने शरद पूर्णिमा के दिन ये पधारे। जिस दिन से हम लोग अपनी परिक्रमा और अपना नियम सेवा व्रत आरंभ करते हैं चैतन्य महाप्रभु उस समय में यहाँ पर केवल जंगल ही जंगल था इसलिए अवरूप घाट में निवास करते रात में और फिर यहाँ आ जाते इमली तला में और वहां पर भाव में भी घोर होकर आविष्ट चित्त से नाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण अपने कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते तन्मय हो जाते। उस समय का वर्णन चैतन्य चैतामृत इत्यादि बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। तभी से हमारे ये गोस्वामी लोग महाप्रभु जी का आगमन उत्सव मनाते हैं और बंगाल से भी कुछ गौड़िया वैष्णव लोग वहां से पधारते हैं और कुछ दिनों तक नहीं जानते कि कितने दिनों तक दो हफ्ते तक यहाँ पर उत्सव होता रहता है। आज हमारे लिए जो वो लोग नहीं है, वे सब विभिन्न प्रकार के उत्सव कीर्तन इसके बाद में उनका महत्ता इत्यादि के संबंध में बहुत से प्रोग्राम यहाँ हुआ करते हैं। आज इन्होंने अनुग्रह करके हमें यहाँ पर निमंत्रण किया, हम लोग उसी के उत्सव के संबंध में आए, उसी के स्मरण के लिए उस जो चैतन्य महाप्रभु आए। ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? चैतन्य महाप्रभु है कौन और इनकी महिमा क्या है? बहुत से अवतार जगत में आते हैं और अपने अपने अवतार का पसरा झोली विश्व को देते हैं। इनमें से जितने भी पहले हमारे भगवान के अवतार हो गए, पूर्व पूर्व समस्त अवतारों को क्रोड़ी भूत कर कृष्णचंद्र जी स्वयं भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जगत में पधारे थे। कारण क्या था आने का? परम करुण रसिक शेखर यही हेतु लीला बड़े करुण है। यदि ये नहीं पधारते, आविर्भूत नहीं होते, तो लोग यही समझते कि जैसे नारायण हमारे अधिपत्य रूप में उपास्य है और नारायण से कोई परतत्व नहीं है, यही लोग समझते हैं। और उस नारायण के ही अंश या कला ये कृष्ण है, ऐसा लोग समझते। इसलिए कृष्ण स्वयं कृपा करके जगत में पधार कर ये दिखलाया कि केवल वो भगवत्ता के ही सार है और ऐश्वर्य से परिमंडित है, ऐसा नहीं। वे लौकिक सद्बंध और जगत में प्रकट होकर सब रसों का आस्वादन करते हैं और सब रसों के स्वयं विषय कृष्ण। किंतु फिर भी वो आते हैं लीला रस का आस्वादन करते हैं, किस लिए? वो तो लोग वृंदावन में ही आस्वादन कर सकते थे, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या? यहाँ अवतरण करने की जरूरत क्या? इसलिए कि लोग उन लीलाओं का स्मरण करें, चिंतन करें, उनका नाम करें और जिससे कि लाखों पीढ़ियों तक जन्म जमान तक लोग इनकी कथाओं को सुन करके और सागर को सहज ही पार कर जाएंगे और उस लीला में प्रवेश करें। श्रवण कीर्तन कृष्ण नहीं श्रीमतान स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो शब्दाचरणी बोधसुन। कृष्ण की कथाएं कैसी है? कृष्ण ही स्वरूप है। उन लीलाओं को जो स्मरण करेगा श्रद्धा के साथ में, धीरे धीरे उसके अनर्थ दूर हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अवस्त्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत प्रवेश कर जाए। इसके अतिरिक्त जीवों के लिए और कोई उपाय नहीं है, इसलिए कृष्ण जी स्वयं पधार करके रसो वैसा होते हुए रस के सागर होते हुए भी उन्होंने इन सब लीलाओं को किया, जिसमें वो शांत दास सख्त बात्सल्य और मधुर रस के विषय होकर के उन्होंने किंतु उनके हृदय में कुछ छू करा गया, आस्वादन किया, किंतु खोब रह गया। क्या खोब रहा? शुभ रहा राधाया प्रणय महिमा कृति शोवा अस्वादो जनात्म मधुरिमा कृति शोवा मध्य शोकन चाचा मधुर भावता कृति शो भक्ति गो भाव तत् भावाचा समझन शब्दी कर। ये कुछ हो रहा कि मैं जगत गुरु हूं, उसे सुंदर और कोई नहीं है, जगत हमारा रूप देकर के सुशीत हो जाता है। किंतु हाँ, एक विषय और है। और क्या है? मैं जिसको देख करके सुशीत हो जाता हूं वो कौन है? श्रीमती राधिका जी। जिसका माधुर्य दे करके हमारा हृदय एकदम जुड़ा जाता है, खुशी का हो जाता है। इसमें यह बात तो ठीक है, मैं हमारे देवसी की ध्वनि सुनकर ध्वनि सुनकर जगत मुक्त हो जाता है, हमारी मधुर बोली सुन करके जगत मुक्त हो जाता है। किंतु जिनकी बोली को सुन करके मधुर हमारी वीणा बजान को हमारी बंसी भी रुक जाती है, मैं परम मुक्त हो जाता वो श्रीमती जानी जाए। इस समय समझता हूँ कि संसार में मैं असमोत तत्व हूँ, न तो कोई हमारे बराबर है न हमसे बढ़कर है। किंतु जब एक विचार करता हूँ तो ये सब विपरीत हो जाते हैं। क्या हो जाता है विपरीत? इतना सब होते हुए भी हमारे अंदर में कोई विशेष कोई बात है जिसको देख करके अनुभव करके श्रीमती राधिका जी ऐसे पागल भी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है, और वो जो प्रेम वैचित्र दिव्योन्माद अपनी चरम सीमा पर उपस्थित हो जाता है। तो हमारे अंदर में क्या चीज है जैसा देख करके होता है? हमारे अंदर है वो क्या चीज है जिसका अनुभव अनुभव करती है, उनका प्रणय महिमा कैसी है, वे हमारी माधुरियों को कैसा आस्वादन किस रूप में करती है, और माधुरियों को आस्वादन करके कौन सा सुख होता है? ये मेरे राधा जी को देख करके हमारा मन कैसा होता है मैं जानता हूँ, किंतु दिव्योन्माद प्रेमोन्माद ये सब हमें नहीं होता है। तो हमारे अंदर में न जाने कुछ है, ये कैसे मैं विषय हूँ प्रेम का, मैं नहीं समझ सकता। यदि राधा जी का भाव राधा जी की सौंदर्य और उनके भाव यदि हमें ले लूँ किसी प्रकार से कृपा करके वो दे दे तो मैं मधुर कर सकता कि हमारी माधुरी से क्या है, हमारे अंदर में वो कौन सी अद्भुत चीज है जिसको देखकर के वो लोग पागल हो जाते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु में आने का प्रधान कारण है। और भी कारणों वो दो बताया, कृष्ण जी बड़े करुण और रसिक, करुण होने के नाते क्या किया, ये कृष्ण का जो रस है उनका जो सेवा रस है प्रेम प्रयोजन, ये समझो हमारा प्रयोजन राजा जी भी नहीं है कृष्ण भी नहीं है, क्या प्रयोजन है कृष्ण कौन सा प्रेम जो राधा और गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो स्नेह प्रेम प्रणय मान इत्यादि, यह प्रेम यही प्रेम राधा कृष्ण दोनों को नाचाता है, भक्तों को नाचाता है, अपने भी नाचता है अपने दूसरों को नाचता है, कर्ण दोनों का है कृष्ण और राधा जी नहीं, इन दोनों को नचाने वाला कौन है कंट्रोलर कौन है, ये प्रेम है। उस समय कृष्ण भूल जाते हैं जब मैं कौन हूँ और श्रीमती राधिका जी दोनों ये मैं कौन हूँ भूल जाते हैं, और प्रेम परमर्श होकर के कठपुतली की तरफ भी जैसे न चाहता चाहता वैसे ही न चाहता, ये कृष्ण प्रेम। इसी चीज को देने के लिए जगत कैसे ये चीज मिलता है, कैसे वो प्रेम मिल सकता है, किसी को कहते हैं राग मार्ग के द्वारा उसको पाना, राग भी हमारा पर वही राग को प्रेम को राग कहते हैं अनुराग हाँ माँ बाप, वो राग को हम कैसे पा सकते हैं इसका पथ प्रदर्शन करने के लिए राग माँ का प्रवर्तन करने के लिए जगत में ये किंतु है दूसरा कारण। प्रथम कारण क्या है? वही रस का, इसलिए इस तत्व को जानने के लिए और एक श्लोक में आना पड़ेगा, क्या राधा कृष्ण प्रणय विकृति लाजनी स्मार एक आत्मारा वो हुआ वो पूरा देव एकदम से दौड़ो चैतन्य का अर्घट मधुना तय तय इत्यादि के मात्र राधा भाव होते सभ्यता। मैं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही के स्वरूप है मैं उनकी वंदना करता हूँ। इसलिए एक चीज को समझो, राधा कौन, राधा जी क्या है कृष्ण प्रणय, कृष्ण की प्रणय की वो दूध का बिका है, किंतु रसगुल्ला कैसा हो गया, वो दूध से भी अधिक पाता, उसे संदेश बना हुआ तो सही तो संदेश बनता है, वो उससे भी अधिक, रसगुल्ला से भी अधिक उसका कीमत। मथुरा में एक मिठाई होती है खोचा, खोचा वो क्या चीज है, दूध का ही विकार है, दूध का दाम होगा यदि 10 रुपये किलो तो खोचन कितना होगा, 150-200-250 रुपया। क्यों ऐसा, तो ये विकार का कृष्ण के प्रति प्रणय की विकृति ऐसा था। कौन किसका, लावणी शक्ति, लावणी शक्ति कौन है भाई, कृष्ण की तीन शक्ति, एक ही शक्ति पराशक्ति है, किंतु तीन रूपों में कार्य करने के लिए जो कृष्ण का लाभ करती है, कृष्ण को आनंदित करती है, और जिसके प्रति गोता प्रति कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो राधिका, उन राधा जी का भाव लेकर के तभी दोनों कामों को पूरा किया। पहला काम क्या, रसास्वादन साधन किया, वो भी ऐसे नहीं प्रकट होकर के सचिनंदन बहुहरि के रूप में राधा जी की प्रिय सखी ललिता विशारद जी के शरणागत में उनके स्कूल में ट्रेनिंग करने के लिए गए। कहाँ गए, संन्यास लेने के बाद में चले गए दक्षिण में, कहाँ गोदावरी, और उनके स्कूल में जो जो संदेह था सब पूछा और सब उसका विचार सुना करे, ये कैसे हम राधा जी के भाव को आस्वादन कर सकते। और फिर वहां आकर के गंभीरा ने सब दामोदर जी का आश्रय लिया, फिर गुरु रामानंद दिया है, और जब खूब ट्रेनिंग पा लिया तो आस्वादन करने लगे, तो राधा कृष्ण मिलित तत्व होने पर भी राधा जी अलग रही, वो किस रूप में रहे, और वो जैसे राधा जी मान की छड़ी लेकर के कृष्ण को नचवन सिखवत राधा प्यारे मान गुमान रघुपति के था, ऐसे ही गदाधर पंडित जी के रूप में ये श्रीमती राधिका जी उनको देख रहे हैं। हमारा ये जो भाव लेकर के करें, कहीं कहीं गलती तो नहीं करें, कहीं त्रुटि तो नहीं होती, और कभी